Hello students, I am Divyangna Divedi and we were studying our second chapter of history jahan hame ab shuru karna hai page number 28 mein from the heading Hamir Dev Chauhan. To hame yahan se start karna hai. Isme aap dekh sakte hain chitra 2.8 jo hai Hamir Dev Chauhan ji ka hai jisme side pose karte hue nazar aa rahe hain wo. Aap log sochiye zara agar ye side pose mein inki picture hai kabhi agar ye मतलब कोई पिक्चर में ऐसे दिखे जिसमें ना सीधे मुंह करके ये दिखेंगे पूरा प्रॉपर फ्रंट व्यू तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये मतलब वही हमीर देव चौहान है. खैर एनीवेज चलिए हम शुरू करते हैं. हमीर देव चौहान 1282 टू 1301 ईस्वी बाघ भट्ट के बाद उसका पुत्र जैत्र सिंह जय सिम्हा रणथंबोर का शासक बना. जैत सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और उसका राज्यरोहण किया. जो बाघ भट्ट के बाद उनके जो पुत्र थे जैत्र सिंह उनको रणथंबोर का रूलर बनाया गया और जैत्र सिंह ने अपने बहुत ही कम शासन काल में मतलब उनका पूरा हुआ भी नहीं था सही से शुरू उन्होंने उसी टाइम पर अपने छोटे पुत्र हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और उसका राज्यरोहण कर दिया था इन द ईयर 1282 ईस्वी में. हमीर देव के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल लिया. हमीर देव चौहान हमीर देव के जब सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने दिग्विजय नीति अपनाते हुए भीमरस का जो राजा था अर्जुन उसको हरा दिया और मांडलगढ़ से वो टैक्स वसूलने लग गया था. दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़ आबू वर्धनपुर काठियावाड़ा पुष्कर चंपा होता हुआ वापस रणथंबोर पहुंचा. साउथ में जो परमार रूलर था भोज उनको जो परमार शासक था मतलब परमार वॉज द डायनेस्टी दैट वॉज द नेम ऑफ द डायनेस्टी एंड द रूलर नेम वॉज भोज तो उनको हरा करके वो चित्तौड़ आबू ये सब जगह से घूमता हुआ पूरा वापस से रणथंबोर पहुंचा. रणथंबोर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में उसने कोटी यजन यज्ञ का आयोजन करवाया. तो ये एक यज्ञ था जो उन्होंने अपनी जीत की खुशी में करवाया था. हमीर ने 17 युद्ध लड़े जिनमें से 16 युद्धों में विजयी रहा. दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो रणथंबोर की ओर रवाना हुआ. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने झाइन के रणथंबोर की ओर बढ़कर दुर्ग में की घेराबंदी कर दी. काफी दिनों के प्रयास के बाद सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो घेरा उठाने का निर्णय लिया. जो दिल्ली का जो शासक था जलालुद्दीन खिलजी उसने क्या किया हमीर देव की बढ़ती हुई सेना को बढ़ती हुई शासन को वो ना अट्रैक्ट हो गया. उसे लगा कि ये राजा की तो शक्ति बहुत बढ़ रही है हर जगह जीत रहा है तो चलो चलकर इसी को कॉन्कर करते हैं इसी के गले में पट्टा डालते हैं और इसी से सारी चीजें हम वसूल लेंगे. तो जब वो गए तो रणथंबोर का जो दुर्ग था उन लोगों ने वहां पर उसको चारों तरफ से घेर लिया था घेराबंदी कर ली थी जलालुद्दीन की फौज ने. लेकिन काफी दिनों तक उन लोगों ने कोशिश करी जलालुद्दीन ने कि हम इसको जीत लें लेकिन वो नहीं जीत पाए और फिर उन्होंने आखिर में उनको जाना पड़ा वापस. जलालुद्दीन खिलजी हमीर देव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा. अतः जून 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंबोर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया. मतलब आखिरी में उसको हार मारनी पड़ी और जो वो इतने अच्छे से एकदम तशन से बनकर आया था ना कि अरे ये राजा तो बहुत मुझे लग रहा है इसकी शक्ति जीत रही है मैं तो इसको हरा दूंगा मेरे बाएं हाथ का खेल है उसी अकड़ के साथ वो वापस चला गया क्योंकि वो बाल भी बाका नहीं कर पाया हमीर देव का. 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया. अलाउद्दीन खिलजी चौहानों की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंबोर जीतने की योजना बनाने लगा. देखिए 1296 में जो जलालुद्दीन था उसका भतीजा और दामाद भतीजा मतलब कि उसके भाई का बेटा और उसका दामाद दोनों था. क्यों था दोनों कैसे था क्योंकि मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि अगर आप सेम मदर से बॉर्न नहीं हो इफ यू आर नॉट सगे भाई बहन तो फिर आप अगर अपने मौसेरे चचेरे भाई बहन से आपकी शादी हो सकती है. इट वॉज दैट मतलब आज भी है ये चीज कि मौसेरे चचेरे भाई से शादी हो सकती है. फिर इन्होंने अलाउद्दीन ने क्या किया जलालुद्दीन की मृत्यु कर दी हत्या कर दी क्योंकि उसे खुद शासन पर बैठना था और इनको जो चौहानों की शक्ति थी ना वो सहन नहीं होती थी और अलाउद्दीन ने उनको जीतने की रणथंबोर को जीतने की उसने रणनीति बनाने लग गया। हालांकि रणनीति तो ये बनाता नहीं था, ये हमेशा छल कपट से ही जीतता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना भी मिल गया। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार यह बहाना हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना था। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह व केहब्रू ने लूट का माल लेकर अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके हम्मीर के पास शरण ली। तो ये जो महमूद शाह था, इसने क्या किया था, जो लूटपाट का जो इसका माल था, जो भी सामान था, ये उसने अलाउद्दीन को देने की बजाय उसका प्रोटेस्ट कर दिया और हम्मीर देव के यहाँ वो चला गया। तो अलाउद्दीन को ना एक रीजन मिल गया वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करने का और उसको उस पर आक्रमण करने का, अटैक करने का। हम्मीर ने अपनी शरण में बगावत करके शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए। तो जब मोहम्मद आया था उनकी शरण में, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम ऐसे लोगों की सहायता नहीं कर सकते जो लूटपाट करके आए हों। और अलाउद्दीन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में के अंत में उलूक खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के लिए भेजा था। 1299 में उसके जो दो सेना थे, शाही सेना मतलब इनके अंत इनके गाइडेंस में, नुसरत खां और किसको भेजा था इनने, उलक खां को, एक बड़ी सेना की टुकड़ी लेकर इनको रणथंभौर के दुर्ग पर भेजा था फॉर अटैकिंग। शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाले झाइन पर आक्रमण किया, जो रणथंभौर की कुंजी कहलाई जाती थी उस पर आक्रमण किया इनने। हम्मीर देव उस समय कोटियजन यज्ञ को समाप्त कर मौन व्रत धारण किए हुए था। हम्मीर ने अपने दो सैनिक अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरह पराजित किया। हुआ क्या था कि उस टाइम पे जो यज्ञ इन्होंने एक एक टाइम पर आयोजित किया था ना, कोटियजन यज्ञ, उसको समाप्त करके उन्होंने, हम्मीर देव ने मौन व्रत धारण किया हुआ था। तो उन्होंने अपने सैनिक अधिकारियों को भीम सिंह को और धर्म सिंह को भेजा था ताकि वो अलाउद्दीन की सेना से लड़े, और उन्होंने अलाउद्दीन की सेना को बहुत बुरी तरह हराया था। भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर की ओर लौट पड़े। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर के दुर्ग के निकट पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि शत्रु की सेना पुनः आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही है। जो भीम सिंह और धर्म सिंह थे, जब वो लूट का माल वापस करके रणथंभौर की ओर लौट रहे थे, तो उनको ये सूचना मिली कि जो शत्रु की सेना है उन्हें वापस से अटैक कर दिया है और वो अटैक करके आगे बढ़ रही है, अब हमारे मतलब उनके साम्राज्य की तरफ आ रही है। भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेजकर स्वयं वापस शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। इस बार उलूक खां ने राजपूतों की सेना को परास्त किया। तो इसने क्या किया था, भीम सिंह ने धर्म सिंह को भेज दिया था रणथंभौर और खुद वापस से जाकर लड़ाई कर रहा था, अपने शत्रुओं से मुकाबला कर रहा था। लेकिन इस बार उलूक खां ने राजपूतों को हरा दिया था क्योंकि ये अकेला था, जिसमें भीम सिंह लड़ते हुए मारा गया। उलूक खां रणथंभौर की ओर नहीं बढ़कर वापस दिल्ली लौट गया। और इस लड़ाई में क्या हुआ था, भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी और उलूक खां वापस से रणथंभौर की तरफ ना बढ़कर भीम सिंह को मारकर ये वापस दिल्ली लौट गया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना के साथ उलूक खां और नुसरत खां को पुनः रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो इन्हें मतलब वापस से वहां भेज दिया कि भाई जाओ और अटैक करो और रणथंभौर जीत के लाओ। सेना ने रणथंभौर दुर्ग को घेराबंदी कर उसकी प्राचीरों को तोड़ना शुरू किया। तभी दुर्ग में से आए हुए एक गोले ने नुसरत खां की मृत्यु हो गई। ये जो नुसरत और उलूक खां थे, इन लोगों ने वापस से वहां पर गए रणथंभौर में और वहां का जो दुर्ग था, जो किला था, उसको ना चारों तरफ से घेर लिया, घेराबंदी कर ली, और फिर उसकी जो प्राचीरें थी मतलब कि जो बाउंड्री वॉल थी ना, उसको तोड़ना शुरू कर दिया तोप के गोलों से। तो दुर्ग से ही एक बड़ा सा गोला आया था तोप का, जिससे नुसरत खां की मृत्यु हो गई। टैं बोल गए ये। इसका पता तुर्की सेना को चला तो तुर्की सेना वहां से भागने लगी। यह देखकर उलूक खान ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खां की मृत्यु तथा सेना की वापसी का समाचार भेजकर और अधिक सेना भिजवाने का अनुरोध किया। तो जब ये गोला पड़ा था और नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी, तो जो ये उलूक खां था, ये अलाउद्दीन का भाई था, इसने बोला कि यार देखो यहां से तो ये लोग भाग रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने देख लिया कि उस पर गोला पड़ा और वो मर गया। तो जो तुर्की सेना थी इनका साथ, इनकी खुद की थोड़ी इतनी बड़ी सेना थी, इनका साथ तो तुर्किश जो सेना है वो दे रही थी। तो वो भाग गई। तो उलूक खान ने अपने भाई अलाउद्दीन से बोला कि भाई तुम और सेना भिजवाओ ताकि हम ये जो रणथंभौर है इसे हम जीत सके। अलाउद्दीन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर की ओर स्वयं ही रवाना हो गया। अब उसने सोचा कि भाई देखो अब इन लल्लू बच्चों के बस की बात नहीं है, अब तो चलो मुझे ही जाना पड़ेगा, अलाउद्दीन ने सोचा। और फिर वो एक बहुत बड़ी सेना लेकर रणथंभौर की ओर रवाना हो गया। दुर्ग पर घेरा डाला। यह घेरा काफी दिनों तक चला। जब वर्षा ऋतु निकट आने लगी और दिल्ली एवं अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने की सूचनाएं सुल्तान को मिलने लगी तो वह काफी चिंतित हो गया। उसने छल कपट का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग को विजयी करने का निश्चय किया। तो काफी टाइम तक इन लोगों ने वहां पर अपना ये घेरा डाल के रखा हुआ था, वहां पर थे। और जब बारिश आने लगी थी तो दिल्ली और अवध में प्रोटेस्टिंग चालू हो गई थी इसके विरुद्ध। तो अलाउद्दीन ने सोचा कि यार ऐसे तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो मैं ना छल कपट करके जीत लेता हूं। तो छल कपट से उसने रणथंभौर जीत लिया था। अलाउद्दीन ने हम्मीर को संदेश भिजवाया कि वह उससे संधि करना चाहता है। हम्मीर ने अपने दो सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि करने के लिए शाही शिविर में भिजवाया। सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देते हुए अपनी ओर मिला लिया। इन दोनों सेना नायकों ने विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता तुर्कों को चला। गुप्त मार्ग से तुर्की सेना दुर्ग में पहुंची। अब हुआ क्या कि अलाउद्दीन ने सोचा कि मैं लड़कर तो जीत नहीं सकता हूं हमीरदेव से। तो इन्होंने क्या किया, बोला कि मुझे भाई समझौता करना है। हमीरदेव के पास इन लोगों इनने अपना संदेश भेजा और बोला कि मुझे समझौता करना है तो आप मतलब आ जाइए। तो हमीरदेव ने क्या किया, अपने दो सेना नायक को भेजा वहां पर, जिसका नाम दो सेनापति थे उनके, उनको भेजा। एक का नाम था रणमल और दूसरे का था रतिपाल। तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन ने इन दोनों को लालच दे दिया कि मैं आपको दुर्ग दिला दूंगा, तो इसलिए आप मेरी ओर हो जाओ और हमें सब जो सीक्रेट जितने भी रास्ते हैं वो सब बता दो। तो ये लोग दुर्ग की लालच में उसकी ओर हो गए और जो टर्किश जो सेना थी, जो आर्मी थी, उनको इस लोग वो लोग क्या हो गया, किले के अंदर घुस गए, दुर्ग के अंदर घुस गए वाया सीक्रेट रूट। इतिहासकारों के अनुसार मुसलमानों के द्वारा एक वर्ष लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया था। ऐसी स्थिति में हम्मीर ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया। अब हुआ क्या था कि मुसलमानों के द्वारा एक वर्ष वहां पर पूरा घेराबंदी करके रखी हुई थी, मतलब कि चारों तरफ से अगर दुर्ग को घेर के रखा हुआ था, तो अगर चारों तरफ से अगर दुश्मन की सेना घेर के रखेगी तो आप दुर्ग से बाहर कैसे जा सकते हो, कोई भी सामान दुर्ग के अंदर कैसे आएगा, चाहे वो खाने पीने का हो चाहे वो किसी भी चीज का हो। तो जो दुर्ग था उसके अंदर क्या चीजें, खाद्य सामग्री खत्म होने लग गई थी। तो इस टाइम पर हमीर देव ने सोचा कि हमें अंदर रहकर बचने की बजाय हमें बाहर जाकर आक्रमण करना चाहिए। आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर की रानी रंगदेवी व उसकी पुत्री पद्माला के नेतृत्व में जल जौहर किया। जब हमीर देव के किले में ये खाने पीने का सामान सब कुछ खत्म होने लगा तो उन्होंने बाहर निकलकर आक्रमण किया। और उन्होंने क्या किया था कि उनको ये पता था कि हो सकता है हम हार जाएं क्योंकि सेना बहुत बड़ी थी। तो राजपूत की जो स्त्रियां थी उन्होंने क्या किया था, हमीर देव की रानी और उसकी पुत्री पद्माला के नेतृत्व में, मतलब उनके अंडर, उन्होंने जल जौहर कर लिया था, मतलब जल समाधि ले ली थी, मर गए थे वो लोग। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई दूसरा इंसान अधिकार जमाए या कुछ भी, कोई भी उनको देखे या कुछ भी करे, उनको बंदी बनाए, तो उन्होंने जल जौहर कर लिया था। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए। दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ जिसमें हम्मीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। तो इसके बाद क्या हुआ था कि जो राजपूत सैनिक थे उन्होंने केसरिया वस्त्र, मतलब कि वो ऑरेंजिश कलर के जो वस्त्र होते हैं ना, वो पहनकर और वहां पर सबसे लड़ा, सबसे मतलब अलाउद्दीन की फौज से लड़े। और इसी युद्ध में जो हम्मीर देव थे वो वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए। उन्होंने बहुत वीरता दिखाई, उन्होंने सही तरीके से लड़ा। अगर उनके साथ धोखा नहीं होता ना तो वो जीतने नहीं देते अलाउद्दीन को, भले वो कितनी बड़ी सेना ले आता। और केसरिया वस्त्र ये लोग क्यों पहनते थे, क्योंकि दैट वॉज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी, इसलिए वो ये वस्त्र पहन कर गए। जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। हम्मीर के विश्वासघाती सेना नायकों रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए कि जो स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके, उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है, दोनों को मरवा दिया। तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी में क्या किया था इनने, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। उन्होंने अपना जो रूल जो वहां पे रूल स्थापित कर लिया था वहां पर। और इन लोगों ने क्या किया था, ये जो दोनों सेना नायक थे ना, सेनापति थे हमीर देव के, उनकी चोट कर दी थी। उनसे ये बोला था ना कि हम आपको दुर्ग दे देंगे, लेकिन दुर्ग नहीं दिया। क्या बोला इनसे कि भाई जो अपने मालिक का, अपने रूलर का, अपने महाराज का सगा नहीं हो सकता, तो उससे आगे चलकर हम ये कैसे मान ले कि वो हमारा सगा होगा, तुम तो हमें भी धोखा दे सकते हो, ऐसा बोलकर उनको मरवा दिया। तो मतलब कितना बड़ा यहाँ पर षड्यंत्र रचा, और छल कपट से इन्होंने ये जंग जीती थी। रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो नामक विद्वान भी था। हम्मीर हट के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपनी शरण में आए व्यक्तियों को नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए उसे अपने पूरे परिवार की ही बलि क्यों ना देनी पड़ी हो। हम्मीर के बारे में कहा गया है कि सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े ना दूजी बार। हम्मीर हट जो था वो पूरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, पूरे वर्ल्ड में उसको जाना माना जाता था। क्यों? क्योंकि उसके शरण में कोई भी व्यक्ति आता था, उसको ना लौटाया नहीं जाता था खाली हाथ, फिर चाहे उसको उसके लिए अपने परिवार को ही क्यों ना दांव पे लगाना पड़े, या उसकी बलि क्यों ना चढ़ानी पड़े। हम्मीर ने अपने पिता जयसिंह को 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हम्मीर देव ने अपने शासन काल में, उनके जो पिताजी थे जयसिंह, उनका 32 वर्ष का शासन काल रहा है, तो उस टाइम पर हम्मीर देव ने उनके याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभे बनवाए थे, और जिन्हें न्याय की छतरी भी कहा जाता है। हम्मीर देव ने अपनी पुत्री पद्माला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। हम्मीर के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था, उनकी जो बेटी थी उसके नाम पर उन्होंने तालाब बनवाया था, और एक विद्वान कवि भी रहता था वहां पर बीजादित्य नाम का। हम्मीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर की चौहानों की शाखा समाप्त हो गई। जब हम्मीर देव चौहान की जब मृत्यु हुई थी, उनका पतन हो गया था लड़ते लड़ते वीरता पूर्वक, तो वहां के जो बाकी के चौहान थे उनकी जो ब्रांच थी, मतलब एक जो गढ़ था ना उनका, वो खत्म हो गया था, कोई चौहान नहीं बचा था वहां पर। चलिए अब जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। इनकी आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पेज पर दी हुई है। महाराणा प्रताप 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रत संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय रविवार 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल में हुआ। प्रताप महाराणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी माता का नाम जयवंताबाई पाली नरेश अखरेज सोना गरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था 9 मई 1540 में। उनके पिताजी का नाम था उदय सिंह, और ये उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, और उनकी माता जी का नाम था जयवंताबाई, जो कि पुत्री थी सोनागरा चौहान की। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजब देव पंवार के साथ हुआ, जिनसे 16 मार्च 1559 ईस्वी में अमर सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोंगुदा में मृत्यु हो गई। जब महाराणा प्रताप की शादी हुई अजब देव पंवार से, उसके बाद 16 मार्च को 1559 में उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अमर सिंह। और जब महाराणा प्रताप 32 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, और वह दिन होली का था, गोगुंदा में उनकी मृत्यु हो गई। उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज तिलक किया। जब इनके पिता उदय सिंह मरे थे तो गोगुंदा में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और माधवदेव बावड़ी पर जो मावाड़ के सामंत थे उन लोगों ने और प्रजा ने जो महाराणा प्रताप था उनका राज्य तिलक किया और उनको राज्य सिंहासन पर बिठाया। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। मतलब महाराणा उदय सिंह ने किसको उत्तराधिकारी बनाया था? जगमाल को। तो जो वहां के लोग थे और वरिष्ठ सम्बन्ध थे उन लोगों ने उसको हटा दिया, बोल दिया कि योग्य नहीं है इस गद्दी पर बैठने के। योग्य कौन है? महाराणा प्रताप ही योग्य है। 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे। 1570 में जब अकबर का टाइम आया था तो उस टाइम पे नागौर दरबार में जो भी रूलर्स थे मेवाड़ को छोड़कर, जितने भी राजपूत रूलर्स थे वो सब अकबर की बात मानकर अकबर के अंडर चले गए, सरेंडर कर दिए बेसिकली उन लोगों ने। और महाराणा प्रताप को मनवाने के लिए उसने 4 ग्रुप्स भेजे थे। पहली बार जलाल खां, जिसको नवंबर 1572 ईस्वी में प्रताप के पास भेजा गया। दूसरी बार जून 1573 ईस्वी में मानसिंह ओमर का शासक को प्रताप को समझाने भेजा गया। तीसरी बार अक्टूबर 1573 में आमेर के भगवान दास को भेजा गया। चौथी बार दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा गया। तो जितने भी लोगों को भेजा गया ना, ये सब राजपूत रूलर्स ही थे जो कि सरेंडर कर दिया था, जिन्होंने अकबर के अंडर अपने आप को। तो इन सभी को 4 बार भेजा गया इस राजा को समझाने के लिए कि भाई तुम भी सरेंडर कर दो, लेकिन वो तो महाराणा प्रताप थे, वो क्यों मानते। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है, तथा अंग्रेजों के समय शास्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन भी कहते हैं। जब इन चारों ग्रुप से महाराणा प्रताप नहीं समझे और अकबर की बात नहीं मानी, तो अकबर ने सोचा कि अब तो मुझे महाराणा प्रताप को बंदी बनाना पड़ेगा और मैं बंदी बनाऊंगा इसको, तभी इसको अकल आएगी। मैंने 4 बार समझाया तो ये समझा नहीं। तो ये जो एक प्लान बनाया जा रहा था उसको बंदी बनाने का, वो कहाँ बनाया जा रहा था? अजमेर के किले में, जिसमें आज एक संग्रहालय है, मतलब एक म्यूजियम है, और अंग्रेजों के टाइम पर ये शास्त्रागार हुआ करता था, तो इसलिए इसको मैगजीन भी कहते थे। अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया तथा मानसिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया गया। अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बना दिया था और आसफ और मानसिंह को का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया था। मतलब जो मेन लीडर है, जो सेनापति है, वो मानसिंह था, और मानसिंह का जो सहयोगी था उसके साथ वो आसफ खां था। पता है ये पढ़ने से कि मतलब जैसे सेनापति मानसिंह को बनाया और उसकी हेल्प करने के लिए आसफ खां को रखा, तो आप लोग समझ सकते हैं, ये पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि मानसिंह था हिंदू राजपूत, उसका हेल्पर किसको रखा गया? आसफ खां को। क्यों रखा गया? क्योंकि अकबर को मानसिंह पर भरोसा ही नहीं होता। भाई हिंदू है, कभी भी अपने रिलीजन के ओर जा सकता है, अपने लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, इमोशंस जाग सकते हैं उसमें, इसलिए उसने अपने एक मुस्लिम जो ऑफिसर है, जो भी उसका हेल्पर है, उसको रखा। ये इस टाइम पे उन लोगों की मेंटालिटी होती थी। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला, 2 माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद वह आगे नाथाद्वार से लगे हुए खैमनौर के मुलेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। तो मानसिंह जो था वो 3 अप्रैल 1576 ईस्वी में निकल गया था, और पहला उसने जो अजमेर के लिए निकल गया था अपनी शाही सेना के साथ, पहला जो उसने पड़ाव डाला था वो मांडलगढ़ में डाला था, और 2 महीने तक वहीं पर रहा। उसके बाद उसने मालेला नामक गांव में अपना दूसरा पड़ाव डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई थी। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। पड़ाव डालने का मतलब होता है अपना एक एरिया बना लिया, एक वहां पे ना रहने लग गए जाकर युद्ध के समय। तो इनको जब पता चल गया था कि ये लोग आ रहे हैं, तो इन्होंने गोगुंदा और खरमौर की पहाड़ियों पर जाके अपना पड़ाव डाला, मतलब वहां जाकर अपना तंबू वम्बू सब गाड़ने लग गए। इस घाटी में एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए ही भी महाराणा प्रताप के लिए, मोर्चाबंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था जहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। तो इनके पास प्लस पॉइंट क्या था कि ये जो घाटी थी यहां पर एक टाइम पर एक ही आदमी जा सकता था, और महाराणा प्रताप के पास सेना कम थी क्योंकि अकबर के पास सेना बहुत ज्यादा थी। तो हुआ क्या था कि इनके पास ये प्लस पॉइंट था, और इनके जो सोल्जर्स थे ना, इनको पहाड़ी एरियाज की ना बहुत अच्छे से जानकारी थी, तो ये लोग छिपकर अच्छे से अटैक कर सकते थे, ये इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। वहीं मुगल सैनिक भटक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से टकरा गया, भूखे प्यासे मरकर जीवन गांव सकते थे गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 ईस्वी में प्रातः काल युद्ध भेरी के साथ आमने सामने हुई। और इसी टाइम पर क्या हुआ कि एक क्या बोलते हैं, मुगल सैनिक भटक गया था, मेवाड़ के सैनिकों से टकरा गया। उसके बाद 18 जून 1576 में सुबह सुबह इन दोनों मतलब दोनों लोगों के बीच में आमने सामने की लड़ाई हुई। राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागे। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां सूर का नेतृत्व सफल रहा। मुगल इतिहासकारी बंदायुनी, जो एक मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं भी उस युद्ध में भाग खड़ा हुआ। राजपूतों ने पहला अटैक किया था मुगलों पर, और वो अटैक इतना सीवियर था, इतना डेंजरस था कि वो देखकर मुगल की सेना तो बिल्कुल दुम दबा के भागी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। और जो एक बहुत ही मशहूर इतिहासकार था बंदायूनी, जो कि मुगल की सेना के साथ था, वो खुद भी भाग गया था वहां से क्योंकि राजपूतों ने इतना ही ज्यादा सीवियर अटैक किया था। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मितहर खान ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंधी और वे पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। एक जो आदमी था उसने क्या किया, अफवाह फैला दी वहां पर मुगल सेना में कि जो अकबर हैं वो खुद लेकर आ रहे हैं शाही सेना। मित्तिर खान ने ये झूठी अफवाह फैला दी। क्यों फैला दी? ताकि जो सैनिक हैं उनका मनोबल वापस आए और वो युद्ध में वापस जाएं लड़ने के लिए, ऐसे भागे नहीं। तो उन्होंने ऐसा झूठ बोल दिया कि अकबर जो है वो शाही सेना लेकर खुद आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आप लड़ाई करते रहो, जीतेंगे हम ही लोग। तो फिर जो उनकी सेना थी अकबर की, तो ये वापस से लड़ने के लिए चली गई। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं, में आ जमे। अब इन लोगों ने पहले जो टुकड़ी थी सेना की उसको हरा दिया, उसके बाद इन्होंने जो ये नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे जो एक मैदान था जिसे रक्तताल कहा जाता है, तो वहां पर आके वो लोग जमे और वहां पे लड़ना शुरू किया। चलिए आप लोगों को एक टास्क देती हूं मैं कि उस जगह को रक्तताल क्यों कहा जाता है, ये आप लोग रिसर्च करेंगे। जब तक आप लोग किसी चीज को खुद से नहीं फाइंड आउट करेंगे ना, तब तक आपको चैप्टर के अंदर है ना इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सो यू हैव टू डू दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामप्रसाद हाथी मुगलों के हाथ लग गया। रामप्रसाद हाथी अकबर के लिए बड़े महत्व का था, जिसका नाम अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था। तो जब ये लड़ाई वगैरह हुई, तो इसमें राणा की ओर से जो पूना व रामप्रसाद हाथी हैं, नाम है ये किसी का, वो इनके हाथ लग गए थे। तो अकबर के लिए ये जो बंदा था रामप्रसाद हाथी, ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट था, और इसका नाम जो एक अकबर ने रखा था वो था पीर प्रसाद कर दिया था। महाराणा प्रताप की नजर मुगल सेना के सेनापति मानसिंह पर पड़ी। स्वाभिभक्त घोड़े चेतक ने स्वामी का संकेत समझकर अपने कदम उस ओर बढ़ाए, जिधर मुगल सेनापति मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर बैठा हुआ था। चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का भरपूर प्रहार मानसिंह पर किया, परंतु मानसिंह होदे में छिप गया और उसके पीछे बैठा अंगरक्षक मारा गया। वह होदे की छतरी का एक खंभा टूट गया। इसी समय हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले खंजर की से चेतक की टांग कट गई। अब हुआ क्या, जब महाराणा प्रताप जब युद्ध कर रहे थे वहां पर, जब वो मैदान में गए, तो उनकी नजर पड़ी मुगल के सेनापति पर जो कि था मानसिंह, क्योंकि मानसिंह ही लेकर आया था पूरी सेना को। तो उन्होंने क्या किया कि अपने घोड़े चेतक से उसको इशारा किया कि वहां लेके चलो मुझे। और चेतक ने क्या किया, वहां पर जो हाथी था जिस पर वो सेनापति बैठा था जिसका नाम था मर्दाना, उसके सर पर ना अपना पैर टिका दिया ताकि जो महाराणा प्रताप है वो भाला मार सके। तो उन्होंने भाला मारा लेकिन वो लगा नहीं उसको मानसिंह को, क्योंकि वो नीचे वो जो भी जिस भी चीज के पीछे छुप गया था उसकी वजह से उसका जो बॉडीगार्ड था, जो अंग रक्षक था, उसको वो भाला लग गया। और साथ ही जो मर्दाना नाम का जो हाथी था उसकी सूंड में ना एक जहरीला खंजर था जो कि चेतक के पैर में लग गया जब वो उसकी सूंड पे पैर रख के टिका हुआ था, तो उसकी वजह से उसकी टांग कट गई थी। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाएं, इसी में मेवाड़ की भलाई है। अब हुआ क्या कि उसी टाइम मुगल की जो शाही सेना थी उसने महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया था। तो उस टाइम एक था झाला मन्ना, वो सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा था और उसने बोला था कि आप ये जो हमारे महाराणा, ये जो हमारा चिन्ह है, राज चिन्ह है, इसको उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध से चले जाइए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो मेवाड़ का राज्य जो है वो संकट में आ जाएगा, तो मेवाड़ की भलाई के लिए आप चले जाइए। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसा ही किया। राज्य चिन्ह को बदलते ही सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट पड़ी। झाला मन्ना इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। अब हुआ क्या, झाला मन्ना जिसने बोला था महाराणा प्रताप से कि आप ये राज्य चिन्ह मुझे दे दीजिए और आप चले जाइए, इसलिए बोला था ताकि वो राजा बच सके, और राज्य चिन्ह दे दिया मतलब कि लोग ये समझ रहे थे कि वो राजा है, झाला मन्ना जो है वो राजा है, उसने उसको राजा समझ लिया था। चेतक भी घायल हो गया था, उसके टांग पे कट आ गया था। तो फिर उनने सोचा महाराणा प्रताप ने कि ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। और जैसे ही वो वहां से गए उन्होंने ये देखा कि राज्य चिन्ह जैसे ही बदला तो उसी तरीके से बहुत सारी लोग जो सेना थी मुगल की उनने इस पर प्रहार कर दिया और ये बहुत वीरों की तरह लड़ा, बहुत अच्छे से लड़ा और फिर इसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप का स्वाभिभक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव के स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक से धार गया। इसी जगह बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। इनका जो बहुत अच्छा मित्र जिसे ये मानते थे, इनका जो घोड़ा चेतक था, बलीचा गांव का एक छोटा सा नाला पार करते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी और इसके नाम की एक इसकी याद में छतरी भी बनी हुई है उधर। मतलब ये सिर्फ इनके लिए इनका घोड़ा नहीं था, इनका दोस्त भी था, तो इनको बहुत दुख लगा था जब इसकी मृत्यु हो गई थी। ये सिर्फ इशारा समझ जाता था कि ये क्या कहना चाहते हैं। महाराणा प्रताप जो कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं रोए, परंतु चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उसी समय ओ नीला घोड़ा सा घोड़ा रा असवार शब्द राणा ने सुने। प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसके भाई शक्ति सिंह को पाया। शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होकर बड़े भाई के चरण पकड़कर क्षमा याचना की। महाराणा प्रताप ने उन्हें गले लगाया और क्षमा कर दिया। इसकी जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली ग्रंथ व राज प्रतिष्ठित प्रशिष्ट से मिलती है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में रणछोर भट्ट नामक विद्वान ने की। जो महाराणा प्रताप थे ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्टेड थे, स्टोन हार्टेड थे, उनको कभी ना रोना नहीं आता था किसी चीज पर। बट जब उनके चेतक की मृत्यु हुई, मतलब जो उसके उनके लिए सिर्फ उनका एक जानवर जो एक पेट था उससे बढ़कर था, उसकी जब मृत्यु हुई तो वो बहुत रोए थे, क्योंकि हर युद्ध में चेतक ने उनका साथ दिया था। एंड होता भी है, अगर आप भी कोई पेट पालो और फिर उसकी डेथ हो जाए तो फिर आपको भी बहुत रोना आता है, आपको बुरा लगता है उसके बारे में, होता है। अगर बहुत टाइम से कोई पेट साथ में रहता है तो उसके लिए लगता है, हम नॉर्मल पेट की बात कर रहे हो, वो तो युद्ध भी लड़ा, सब कुछ किया, तो उसको तो लगेगा ही। फिर सामने से उसने देखा तो उसका भाई था, भाई आया हुआ था। तो उसने जब सर उठा के देखा तो उसका भाई था वहां पर शक्ति सिंह। उसने अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका मांगा और बोला कि आप मुझे माफ कर दीजिए, तो महाराणा प्रताप ने उसको माफ कर दिया। और इस इंसिडेंट के बारे में हमें एक बुक से पता चलता है, ग्रंथ से पता चलता है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक थी। दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग प्लीज रिवाइज करते रहिएगा, बिना रिविजन के कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा. ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग.